नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण आर्थिक क्षमता के उपयोग के लिए आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते की जल्द समीक्षा का आह्वान किया। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में एकजुटता पर बल दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मलेशिया के कुआलालंपुर में 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र आज से नई दिल्ली में। तूफान मेलिसा श्रेणी 4 के तूफान में बदला। 5 कैरेबियाई देशों ने निचले इलाकों को खाली कराया। और क्रिकेट में नवी मुंबई में भारत और बांग्लादेश के बीच महिला विश्व कप का आखिरी लीग मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसियान नेताओं ने आसियान भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा की है और व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया है। कल मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान की है, क्योंकि ये साथ मिलकर विश्व की लगभग 1/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
21वीं सदी हमारी सदी है, भारत और आसियान की सदी है। मुझे विश्वास है कि आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में एकजुटता पर बल दिया। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी लागू करने की कार्य योजना के लिए व्यापक समर्थन की भी घोषणा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज मलेशिया के कुआलालंपुर में 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये सम्मेलन विश्व नेताओं को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के मार्ग में आने वाली चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श का अवसर देगा। बैठक के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। डॉ. जयशंकर ने कल कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन से अलग एक बैठक में सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। जर्मनी ने मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए विस्तारित युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने दोनों देशों से अपनी सीमाएं फिर से खोलने और व्यापार संबंधों को फिर शुरू करने का भी आग्रह किया। जर्मनी के विदेश कार्यालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विस्तारित युद्ध विराम समझौता क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारनविराकुल ने कंबोडियाई नेताओं के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज मलेशिया से टोक्यो के लिए रवाना होंगे। ट्रंप इंपीरियल पैलेस में जापान के सम्राट नारुहितो से मुलाकात करेंगे और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साने ताकाइची से बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जापान में तैनात अमरीकी सैनिकों से भी मिलेंगे। ये यात्रा मलेशिया आसियान शिखर सम्मेलन के बाद हो रही है। मलेशिया में उन्होंने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ शुल्क पर बातचीत की। ट्रंप द्वारा जापान और दक्षिण कोरिया से $900 अरब के अमरीकी निवेश पर चर्चा को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। ये चर्चा अमरीकी शुल्क को 25% से घटाकर 15% करने से भी जुड़ी है। इसके बाद ट्रंप दक्षिण कोरिया के बुसान में एपिक शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मिलेंगे। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन के साथ उनकी मुलाकात की योजना नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन की यात्रा पर बेल्जियम के ब्रसेल्स जाएंगे। श्री गोयल यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ चर्चा करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र आज भारत की मेजबानी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 124 सदस्य देश भाग लेंगे।
सौर गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौर ऊर्जा के इस्तेमाल संबंधी विजन को आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा परिवार अपनी छतों पर सौर ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा को बेहतर बनाने और कार्बन तटस्थ भविष्य की ओर एक स्थायी बदलाव के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ काम करता है। यह कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। विश्व दर्पण के लिए अक्षित वैद्यन।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल सेशेल्स के नए राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सेशेल्स की 2 दिन की यात्रा पर गए श्री राधाकृष्णन ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों की साझा संस्कृति और मजबूत ऐतिहासिक संबंधों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सेशेल्स अल्प विकसित देशों की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए समग्र महासागर के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भागीदार है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
PM Modi's vision of mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar, reflects our shared commitment to a free, open and secure Indian Ocean. Seychelles is a vital partner in India's vision, Mahasagar.
चक्रवात मेलिसा 4थी श्रेणी के तूफान में बदल गया है। इसके कारण 5 कैरिबियाई देशों हैती, जमैका, डोमिनिकन गणराज्य, क्यूबा और बहामास के निचले इलाकों को खाली कराना पड़ा है। ये जमैका में अब तक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात हो सकता है। इसके कारण 35 इंच तक बारिश और 8 फुट से अधिक ऊंची तूफानी लहरें उठ सकती हैं। इसके कारण अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान के कारण विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। कैरेबियाई क्षेत्र में आपदा राहत एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। क्यूबा में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
भारत और बांग्लादेश के बीच ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का अंतिम लीग मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया। नवी मुंबई में कल रात डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर भारत को जीत के लिए 27 ओवर में 126 रन का संशोधित लक्ष्य मिला था। इसके जवाब में वर्षा के कारण मैच रोके जाने के समय भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में बिना किसी नुकसान के 57 रन बना लिए थे। मैच रद्द होने के समय स्मृति मानधना 34 और अमनजोत कौर 15 रन बनाकर खेल रही थी। इससे पहले बांग्लादेश वर्षा के कारण पुनः निर्धारित 27 ओवर में 9 विकेट पर केवल 119 रन ही बना सका। भारत 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 7 अंक लेकर तालिका में 4थे स्थान पर रहा। उधर बहरीन में एशियाई युवा खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में प्रीतिस्मिता भोई ने कल नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। लड़कियों के 44 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 92 किलोग्राम भार उठाया। उन्होंने कुल 158 किलोग्राम वजन उठाकर देश को स्वर्ण पदक दिलाया। इधर रांची में कल संपन्न हुई 4थी दक्षिण।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण आर्थिक क्षमता के उपयोग के लिए आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते की जल्द समीक्षा का आह्वान किया। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में एकजुटता पर बल दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मलेशिया के क्वालालंपुर में 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र आज से नई दिल्ली में। तूफान मेलिसा श्रेणी 4 के तूफान में बदला। 5 कैरेबियाई देशों ने निचले इलाकों को खाली कराया। और क्रिकेट में नवी मुंबई में भारत और बांग्लादेश के बीच महिला विश्व कप का आखिरी लीग मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।